بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کا جو تھیم ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اور یہ ساری دعوت جو ہے وہ اصل میں مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑنے کے لیے ہے، اور وہ جوڑنا ایسا ہے کہ اپنے رب کی پہچان کرا دے. اور رب کی پہچان یہ ہے کہ رب جو ہے وہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور تمام جو اس کی ذاتی اور صفاتی جو بھی اس کے اندر صفات موجود ہیں اور اس کی جو ذات ہے اس میں کوئی شخص بھی یا کوئی مخلوق بھی اس کا شریک نہیں ہے بالکل بھی. اور اسی کو ہم شرک کہتے ہیں، شیئرنگ کرنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی اس کے جیسا ماننا. اس کے بعد ہم بات ہو رہی تھی کہ شرک جو ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں. شرک کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جو کہ ہمارے عقیدے میں ہوتا ہے، جیسے ہم شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہمارے عقائد میں ہوتا ہے، اور ایک وہ جو ہمارے اعمال میں، جب یہی عقیدے کا شرک آ جاتا ہے تو وہ شرک فعلی کہلاتا ہے. دوسرا شرک فعلی ہے، یعنی وہ شرک جو کہ ہمارے یقین اور اعتقاد میں موجود ہوتا ہے، جو ابھی سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اس کو علمی طور پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے عقیدے کا شرک ہوتا ہے. اور وہی شرک جب ہمارے اعمال میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں آ جاتا ہے، ہماری رسومات میں آ جاتا ہے، یا ہماری بول چال میں آ جاتا ہے، جو کہ افعال سے ہمارے کام کرنے کے طریقے سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ شرک جو ہے وہ عملی شرک ہو جاتا ہے، جو کہ شرک خفی ہے. پہلے ہم شرک جلی کو پڑھ لیتے ہیں کہ شرک جلی یعنی واضح شرک جو ہمارے عقیدے کے اندر پایا جاتا ہے، وہ انسانوں کے عقیدے کے اندر پایا جاتا ہے، وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے. پورے قرآن مجید کو جب آپ بہت زیادہ اچھی طرح ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو ہمیں شرک کی چار قسمیں نظر آتی ہیں جن کا رد اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں پورے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے. پہلا جو شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ کامنلی کیا گیا ہے اب تک، وہ اس کے علم میں شرک کرنا ہوتا ہے، کہ اللہ کا جو علم ہے اس کے اندر کسی کو بھی اس کے ہم پلہ مانا جائے یا اس کے جیسا مانا جائے، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا شرک ہے اس کو ہم عربی میں شرک فی العلم کہتے ہیں. اور جو دوسرا شرک ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شرک، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یعنی کہ اس کی جو کام کرنے کا دائرہ کار ہے اور جتنی بھی اس کی کائنات کے اوپر اس کا جو اختیار ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تصرف کرنا. کہ اس ایریا کے اندر مثال کے طور پہ کوئی کسی علاقے کا ایس پی ہے پولیس میں، اب وہ سارا جو ایریا ہے وہ اس کے انڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے الٹ پلٹ دے، جس طرح سے چاہے قوانین کو نافذ کرے، اور جس طرح سے چاہے پولیس کو بھیج کے جو جو چیز کروانا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس میں اس کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو ہم کہتے ہیں اس کا تصرف اس میں ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی ایک چیز ہوتی ہے قدرت، اختیار اور تصرف، جسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، پاور میں ہونا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر بھی شرک کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بندوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو بھی کسی قسم کا کوئی حق حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کے اندر اللہ ان کو کسی قسم کا عمل دخل حاصل ہے. جو تیسری قسم کا جو شرک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے بظاہر تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اسی کے لیے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اسی کے لیے دے رہے ہیں، لیکن کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر شرک بھی شامل ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگنے میں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں، اس سے مدد مانگنے کے اندر کسی کو شریک کرنا. پہلے شرک کی طرف چلتے ہیں کہ شرک فی العلم کسے کہتے ہیں، کہ شرک علم کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے. علم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے. علیم جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزیجوریٹڈ اگر کیا جائے نا نالج کو، تو یہ اس کا ایک صیغہ ہے. صیغہ عربی میں کہتے ہیں کسی ورڈ کو، جیسے آپ ایک ورب بولتے ہیں تو ورب جو ہے ہیلپ جو ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ایک صیغہ ہے عربی میں، اور اس ہیلپ سے ہی آپ بہت سارے ورڈز نکالتے ہیں نا، हेल्प्ड निकाल लेंगे, नॉट हेल्पिंग निकाल लेंगे, हेल्पिंग निकाल लेंगे इस तरह। तो इसी तरह अरबी ज़ुबान के अंदर भी एक जो वर्ब होता है यानी कि फ़ेल होता है, उसको भी हम कई तरह से जो है उसको चेंज कर लेते हैं। कभी उसमें ज़ेर लगा देते हैं, उसका कोई और मायना बन जाता है, कभी ज़बर लगा देते हैं, कभी अलिफ़ लाम लगा देते हैं, कभी उसमें दो उल्टा पेश लगा देते हैं, कभी कुछ। तो इस तरह वो सीगे जो है वो चेंज होते जाते हैं, यानी वर्ब्स जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है, सिफ़ात हैं, उसकी जितनी भी सिफ़ात हैं ना, आप देखेंगे वो एग्जेजरेटेड हैं बहुत ज़्यादा। जैसे इल्म से अलीम कहा जाता है, आलिम नहीं कहा अल्लाह ताला को, अलीमुन है। ठीक है, आलिम सिर्फ वो होगा जो कि इल्म रखने वाला होता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट होता है, जो कि काम कर रहा होता है, वो कि आलिम होता है। लेकिन अलीम कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी है जो कि किसी और के अंदर नहीं हो सकता। तो किसी इंसान के लिए हम ये अलीम का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह इन मायना के अंदर, जो कि अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि इन अल्लाह अलीमुम बिज़ात सुदूर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दिलों के हाल को जो है वो जानते हैं। और इसमें अब हम आपको ये बात मैं समझाती चलूँ कि ये जो इल्म है इसके बारे में, इसकी एक मिसाल इस तरह से है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चले मिसाल देते हैं कि एक दफ़ा कोहे तूर पे अचानक तशरीफ़ ले गए, रास्ते में ख्याल आया कि घर पे इत्तला तो दी नहीं है, अल्लाह जाने रिस्क का क्या इंतज़ाम होगा। तो वापस आ रहे थे तो आवाज़ आई उनको कि ए मूसा, सामने जो चट्टान है ना इसको तोड़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान को तोड़ा तो उसमें एक और चट्टान निकली, छोटे सा पत्थर। उसको तोड़ा तो फिर उसमें से एक और पत्थर निकला, उसको तोड़ा तो उसमें एक बहुत छोटा सा पत्थर निकला, और उसको तोड़ा तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा था। और वहाँ लिखते हैं वो कि उस कीड़े के मुंह के अंदर जो है वो फीही नबतुन तरी, उसके मुंह के अंदर ना एक तर हुआ हुआ घास का हल्का सा छोटा सा एक रेशा सा था, और उसके ऊपर शबनम का कतरा डला हुआ था, और वो कीड़ा जो है वो कुछ बोल रहा था। तो अल्लाह ताला ने ईसा मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा तुम जाओ और जाके देखो कि ये क्या कह रहा है, मेरा ये जो छोटा सा कीड़ा है ये क्या कह रहा है। मुफस्सरीन ने बहुत ज़्यादा इस वाक्य को जिक्र फरमाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कान लगाए उसकी तरफ तो वो ज़ुबानी हाल से बड़ा खूबसूरती से कलाम पढ़ रहा था और कह रहा था कि सुबहाना मैं यरानी, पाक है वो ज़ात जो मुझे देख रही है, वह यारफू मकानी, और जो मेरे इस मकाम को जानती है कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, व यरज़ुकुनी, और मुझे वो ग़िज़ा दे रही है, वला यंसानी, और वो मुझे भूलती नहीं है कभी भी। तो आप ये देखें कि नबी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी कभी ये चीज़ें दिखाई दिखाई जाती हैं और ईमान की पुख्तगी के लिए, कि और ज़्यादा तुम ये देखो कि अल्लाह के इल्म और कमालात कैसे हैं, जिसको कि हालांकि नबियों से ज़्यादा इल्म किसका होता है, लेकिन नबी भी जो है वो उतने इल्म के ऊपर मुत्तले होते हैं उन बातों पर जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अता फरमाता है। इसी तरह जैसे नबी पाक सल्लम के साथ आया एक मरतबा कि नबी पाक सल्लम एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपको कुछ गलती लग गई नमाज के अंदर, फिर आपने सजदा सहव किया। बुखारी ने शरीफ में इस हदीस को नकल किया गया है। बाद में जब आपने सलाम फरमाया तो फिर एक और सहाबी ने भी तायद की कि रसूल आपने सजदा सहव किया कि ठीक किया, आपसे गलती हुई थी। तो आपने फरमाया था वहाँ कि इन्नमा अना बशर, बेशक ज़ाहिर है कि मैं भी एक इंसान हूँ, अनसा कमा तनसा, मैं भी भूल जाता हूँ जैसे कि तुम भूल जाते हो, फजक की रोनी, तो बस तुम जो हो मुझे याद करवा दिया करो इस चीज़ को, जिस चीज़ को कि मैं भूल जाऊँ। क्योंकि अल्लाह के अलावा तमाम ज़मीन और आसमान की मखलूक जो है वो अल्लाह की मोहताज है, और नबी के लिए भी अम्बिया के लिए भी अल्लाह ताला ने यही हुक्म फरमाया कि इन अत्तबियो इल्ला मा युहाई लगी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु क्या फरमाते हैं कि बेशक मैं सिर्फ उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ मगर वो जो कि मेरे ऊपर वही आती है। ठीक है, क्योंकि खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है कि मैं खालिस अल्लाह के वही का पाबंद हूँ। तो अल्लाह का जो इल्म होता है वो बहुत ज़्यादा वसी होता है, और अल्लाह का जो इल्म है या अल्लाह की कोई भी सिफत है उसके बारे में सोच लें आप, इस बात को याद रख लें कि वो किसी भी सबब की मोहताज नहीं होती, वो उसकी ज़ाती सिफत होती है, उसमें हमेशा से होती है और उसमें हमेशा रहेगी। अगर इल्म है तो वो अल्लाह ताला की ज़ाती सिफत है, अल्लाह को किसी ने अता नहीं किया है, ठीक है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई वो उसको छीन सकता है, और ना किसी लम्हे में भी वो कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती, ना वो किसी सबब का मोहताज होता है। ठीक है, आले इमरान में जब आदम अलैहिस्सलाम का तस्करा फरमाते हैं अल्लाह ताला और तमाम अम्बिया का जिक्र करते हैं, तो तो उसके बाद ये आयत आती है बल्कि कि अल्लाह के इल्म में वो फरमाते हैं कि ज़ालिका मिन अम्बाइल ग़ैबी नूही ही इलैक, कि ये अल्लाह के ग़ैब की ख़बरों में से हैं और ये जो है ना वही करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको। तो नबी को जो कहेंगे हम, अब ये देखें इसका मतलब ये है कि ज़ालिका मिन अम्बाइल ग़ैबी, कि ए नबी ये जो सारी मैंने आपको ख़बरें बताई हैं आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और तमाम अम्बिया के नामों का जिक्र करते हैं, जब इंशाल्लाह आले इमरान आएगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इसको कि किस तरह से वहाँ पे और एक्सप्लेनेशन होगी इस चीज़ की, कि मैंने ये जो आपके सामने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और अम्बिया का जिक्र किया और कुरान में जा बजा हैं ये मकामात, को ये एक दो जगह नहीं है, तो ये कुरान ही आपको बता रहा है कि ज़ालिका मिन अम्बाइल ग़ैब, कि ए नबी ये ग़ैब की खबरी हैं लेकिन नूही ही इलैक, इनको आपकी तरफ वही किया जा रहा है। यानी जब अल्लाह के पास वो इल्म होता है तो उसको इल्मुल गैब कहा जाता है। गैब का मतलब क्या होता है? गैब मा गाब अन आइनैक, यानी कि वो इल्म जो कि आपकी आंखों के आगे से गायब है ना, ठीक है, आपकी नज़रों के सामने से गायब है, तो वो गैब कहलाएगा। वो नूही ही इलैक, और जब वो आपके पास आ गया तो वो इल्मुल वही बन गया, इल्मुल नबुवा बन गया, इल्मुल रसालत बन गया। ये फ़र्क होता है इल्मुल वही के अंदर और इल्मुल गैब के अंदर, ठीक है। दुनिया में आज तक जितनी तफसीर लिखी जा चुकी हैं उनमें जो हम ये कहते हैं कि कोई कोई एक ऐसी तफसीर हो जिसके बारे में उलमा जो है मोहताज हो जाते हैं कि इस तफसीर को हमें जो है ना वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें सारे उलूम आ जाते हैं। अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला का नाम इंशाल्लाह आप सुनते रहेंगे और कहीं भी शायद आपने सुना होगा, 1100 सदी हिजरी में गुजरे हैं ये। तो इनकी जो तफसीर है, तफसीर रूहुल मानी है, 11 जिल्दों में अरबी में, तो इनकी तफसीर के बारे में कहा जाता है कि जिसने आलूसी बगदादी की तफसीर पढ़ ली है रूहुल मानी के नाम से, तो उसको सारी तफसीर बेनियाज कर देती हैं इंसान को उसकी तफसीर पढ़ने के बाद। उन्होंने यहाँ पे इसके इस आयत की ज़ील में ज़िमन में इल्मुल ग़ैब की क्या तारीफ़ की है वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको फिर हमेशा ये बात ज़िंदगी भर याद रहेगी कि आप फ़र्क कर सकेंगे कोई चीज़ ग़ैब की है या नहीं है, इसका क्या मतलब है। अल्लाह ताला के ये जो आलिम हैं ये बहुत मतलब अल्लाह ने इनको ख़ास उलूम दिए थे, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि इल्मुल ग़ैब मा लम यूहा बिही, इल्मे ग़ैब वो इल्म है जिसको वही नहीं किया जाता, वलम यकुम अलैहि दलील, और उसके ऊपर कोई दलील कायम नहीं की जा सकती, जैसे कि अल्लाह का इल्म है कि वो किसी दलील का मोहताज नहीं है, ना ही उसको वही किया गया है, लेकिन जो नबी का इल्म होता है उसको वही भी किया जाता है और वो दलील का मोहताज भी होता है, और उसको सबब होता है, वो किसी के ज़रिए से पहुंचा होता है, जैसे कि जिब्राइल अमीन जो है वो उसका सबब बने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने के लिए, ठीक है। तो इल्म गैब क्या है? वो अल्लाह की सिफत ज़ाती है, किसी इंसान के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म गैब की ताकत नहीं दी, इल्मुल वही भेजी है, जो इल्म अता हुआ है वो हुआ है क़यामत तक अता, वो इल्म वही है, और इसमें कोई कलाम नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं, कोई सेकेंड बात है ही नहीं, कि वो इल्म जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अम्बिया को हासिल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इल्म आता है जिसको हम, मैंने आपसे कहा कि दूसरी जो चीज़ आती है शिर्क की जो दूसरी तारीफ़ है जो कि अकीदे में हमारे शामिल होती है, वो ये है कि शिर्क फित तसरुफ़, यानी कि अल्लाह के इख्तियार में उसकी कुदरत के अंदर जो है वो इंसान ये समझे कि कोई ना कोई जो है वो शामिल है, और कोई और शख्स भी इख्तियार रखता है, अल्लाह ने इसको कुछ हद तक इख्तियार दे दिया और वो ये काम कर सकता है। इसकी साफ़ मुज़म्मत फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन को मैंने पैदा किया, कायनात को मैंने पैदा किया, अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ फिराशा, जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, वस्समा बना, और आसमान को जो है तुम्हारे ऊपर छत बनाया, ठीक है, अनज़ला मिनस्समाई माअ, और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फ़ाख़रज बिही लकुम मिनस्समरात रिज़्क़न लकुम, और उसमें से तुम्हारे लिए क्या निकाले, फल निकाले, रिस्क देते हैं वो तुम्हारे लिए। तो ये 5 बातें 6 बातें 8 बातें कर कर के अल्लाह ताला एक एक लफ्ज़ को, कि अल्लज़ी खालका, वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारे लिए ये बनाई ज़मीन, जिसने तुम्हारे लिए आसमान बनाया, जिसने तुम्हारे लिए आसमान में बुर्ज बनाए, जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए, जिसने तुम्हारे लिए कायनात बनाई, तुम्हारे लिए सूरज बनाया और मुकर्रर मुद्दतों पर उसको चलाया। आगे अल्लाह ताला दलील का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि फ़ला तजउलू लिल्लाही अंदादा, तो बस अल्लाह के साथ क्यों इतने सारे अंदाद, अंदाद कहते हैं निद की जमा, बहुत सारे जो है वो लोगों को क्यों तुम पूजना शुरू कर देते हो। नेद कहते हैं वो जिसको अल्लाह के सामने ला के खड़ा कर दिया जाए, जिसको अल्लाह ताला की मुकाबले में ला के खड़ा किया जाए और जिसको तुम पूजना शुरू कर दो। चाहे आप इसको ज़ाहरी तौर पे पूछते हो, चाहे आप उसको अपने अकीदे में रख के पूछते हो, चाहे आप उसको अपने अमाल के तौर पे पूछते हो, ये सब चीज़ें मैं आपको ऐसा ऐसा वाजे करती जाऊंगी। इसी तरह एक मिसाल दी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो ज़ात है कि नहीं है उसके सिवा कोई माबूद मगर वो है जो कि हई है और क़य्यूम है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और क़य्यूम का मतलब ये होता है जो खुद कायम हो, उसको कायम करने वाला कोई ना हो और ना वो किसी से कायम होने में किसी की मोहताज हो, ठीक है। और अल्लाह ही के ऊपर जो है वो मोमिनीन जो है वो तवक्कुल करते हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको बताऊँ इस तरह के, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दो अजवाज मतहरात, एक तो ये मैं आपको हदीस बताऊँ कि आपने हज़रत अली को भेजा था कि, और आपने उनको फरमाया था, बुखारी में ये वाली हदीस मिलती है कि कोई ऊंची दरगाह नहीं छोड़ना मगर उसको गिरा देना, और कोई मूर्ति ना छोड़ना मगर मिटा के उसको रख देना। और वहाँ भेज के उन्होंने हुक्म दिया था उनको कि इस तरह की सारी दरगाहें जिनके अंदर इबादत की जाती है इंसानों की, तो या फिर कोई ऐसी मूर्तियाँ भी हों तो फिर उनको तोड़ देना। इस तरह एक वाक्या मिलता है कि दो अजवाज मुतहरात अफ्रीका गईं, वहाँ चर्च में तस्वीर देखीं, तो हजूर पाक ने फरमाया कि उलाइक अल्लज़ीना इज़ा माता फ़ीहिम रजुलुन सालेहुन, ये वो लोग हैं जब इनमें कोई रजुल सालेह नेक आदमी मर जाता था तो बनू अला कब्र ही मस्जिदा, तो वो अपनी कब्रों पे ना मस्जिदें बना लेते थे उनकी निशानी के तौर पे। उलाइका शिरारुल खलकल्ला इंदल्ला, ठीक है, ये बदतरीन मखलूक थे अल्लाह ताला के नज़दीक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाया। चुनाचा अल्लाह ताला के इख्तियार के अंदर किसी शख्स को भी ये समझना कि फ़लां शख्स मेरा काम उस तरह कर सकता है, मुझे औलाद दे सकता है, ठीक है, मेरा इम्तिहान पास करवा सकता है, मेरी शादी करवा सकता है, मेरे रिश्ते करवा सकता है, मेरी दुनिया के अंदर मेरी फ़लां फ़लां काम यूँ करवा सकता है जैसा कि अल्लाह करवा सकता है, ठीक है, या अल्लाह ताला ने उसको कुछ इख्तियार दे दिया है, या अल्लाह ताला ने उसको कोई हद तक जो है वो किसी किस्म की कोई वो दे दी है, कमांड दे दी है कि वो ये कर सकता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कुछ नहीं कहना है, तो या इससे कोई फ़र्क पड़ जाता है अल्लाह ताला की कायनात और बादशाहत के अंदर, तो ये चीज़ भी उस शिर्क कहलाई जाती है। फिर तीसरी चीज़ होती है इल्म जो है, जैसे हम कहते हैं शिर्क जो है वो दुआ के अंदर करना। अच्छा मैं आपको बल्कि इसमें दो मिसालें और दूंगी। देखें बात क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी है कि ये आ जाती है कि लोग ज़रा पूछते हैं इसके बारे में सवाल, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ इसकी इल्म तसरुफ की, कि अगर हम एक मिसाल लेते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना एक खातून थी, उनका नाम सुनैरा था, उनके बारे में उसूदुल गाबा में वाक़िया लिखा है कि वो आँखों से नाबीना हो गई थी। मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया कि भाई हमारे बुतों ने तो काम कर दिखाया और हमारे बुत तो हमारी बात मानते हैं, तो इसको जो है वो तुम्हारा अल्लाह जो है वो ठीक करके दिखाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके पास तशरीफ़ लाई, उन्होंने कहा कि या रसूल मैं नाबीना हो गई हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, आपने नमाज़ अदा फरमाई और दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इस औरत की बिनाई को वापस फरमा दे। ये असबाब हैं जिनको इंसान इख्तियार करता है अल्लाह ताला से दुआ मंगवाने के लिए। खुद इस तरह नहीं किया कि आपने कुछ किया हो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे और उनकी जो वो आँखों की बिनाई जो है वो वापस आ गई हो, अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरा था कि बिनाई वापस आ गई। इसी तरह एक मिर्गी ज़दा खातून थी, उन्होंने भी आके नबी पाक से शिकायत की कि या रसूल्ला मैं बरहना हो जाती हूँ जब मेरे मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो पहले मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो नबी पाक ने फरमाया कि देखो अगर तुम सब्र करोगी तो आखिरत में तो बेहतरीन अजर है तुम्हारे लिए। और बाद तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं दुनिया में सब्र इख्तियार कर लेती हूँ, लेकिन मेरे जो कपड़े वगैरह हट जाते हैं थोड़ा, और इस तरह तो मुझे, मैं एक औरत हूँ जाहिर है, तो ये बाज़ार में अगर मैं निकलूँ या कुछ इस तरह है तो आप इसके लिए दुआ फरमाएं। तो कहते हैं कि नबी पाक ने उनके लिए दुआ फरमाई। उलमा लिखते हैं कि आखिर तक वो दीवानी तो थी लेकिन अक़ल उसकी माशाल्लाह कामिल थी, ठीक है, कि दौरा पड़ा उस वक्त में वो है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक की दुआ कबूल फरमाई और उसके लिबास वगैरह का जो है वो कभी भी इस तरह नहीं हुआ किसी के सामने कि जो है वो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़े बाद में इस तरह की। तो ये चीज़ें क्या हैं कि ये असबाब के ज़रिए से हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत ज़्यादा लोग कह देते हैं कि जी आजकल के दौर में तो पता चल जाता है बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगा, और अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि अल्लाह ही जानता है क्या कुछ जो है वो अरहाम के अंदर है। तो देखें ये जो मशीन्स होती हैं अल्ट्रासाउंड की मशीन होती हैं, तो ये सबब होती है। अब हमें तो किसी सबब के ज़रिए किसी चीज़ का नॉलेज हासिल हो रहा है, किसी सबब के ज़रिए यानी दुआ के ज़रिए हम अल्लाह से कोई दुआ मांग रहे हैं तो फिर वो कबूल हो रही है। करने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है ना। तो इस चीज़ से भी हमें ये बात समझ में आ जाती है कि कोई चीज़ भी असबाब के दर्जे में है तो इसका मतलब नहीं है कि वो गोया अल्लाह ताला के साथ हम शिर्क कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। अच्छा, तीसरी जो एक शिर्क की किस्म थी वो हमने पढ़ी थी दुआ के बारे में कि शिर्क फिर दुआ जो है वो क्या होती है। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया ना कि मैं तुम्हारी रगे गर्दन से भी ज़्यादा तुमसे करीब हूँ। ठीक है, और जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं कहता हूँ कि मेरी पुकार को मैं तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ और रगे गर्दन से भी ज़्यादा तुमसे करीब हूँ। और इसके अलावा सूरह रहमान आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे तो उसमें आता है कि यस अलू मन फिस समावाती वल अर्द कुल्ला योमिन हुआ फी शान, कि हर वक्त वो किसी को कुछ ना कुछ देने में जो है ना मसरूफ़ रहता है। ठीक है, उससे सवाल करते हैं जो कुछ आसमान और ज़मीन में लोग हैं, और कुल्ला योमिन हर रोज़ हुआ फी शान। शान क्या मतलब, उसकी एक अलग शान है, यानी वो हर वक्त इंतज़ामी उमूर में और दूसरी चीज़ों में एक मसरूफियत है उसकी, उसका एक शान है, उसके काम है। फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा मा तुकज़्ज़िमान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी बातों को झुटलाओगे। यानी कि हर वक्त हर इंसान कुछ ना कुछ उससे मांगने में लगा हुआ है, ये एक उसकी बेसिकली शान है जो कि उसने बयान फरमाई कि उसी से मांगा जाता है। तो अंबिया के वाक़यात को इसके ज़मन में देखते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको पता है कि जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि भाई अब ये ईमान नहीं लाएगी मेरी कौम, तो आपने देखा कि हो सकता है कि बस अब अजाब आए ही चाहता है तो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत ये थी कि जब नबी होते हैं ना कौम के अंदर तो फिर उसमें अजाब नहीं आता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ, और जब वो निकल गए अपनी बस्ती से तो अजाब आ गया। अजाब को दूर से देखती कौम बड़ी जीरक और समझदार थी, फ़ौरन ही जो है वो सजदे में गिर गई और सारी कौम ने जो है वो दुआएं मांगनी शुरू कर दी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो कश्ती में सवार थे तो कश्ती में भंवर आ गया, भंवर में कश्ती आ गई, और वो बिल्कुल जो है वो मल्लाह ने कहा कि बस यहाँ कोई बंदा ऐसा है तो उसकी कुर्बानी चाहिए अल्लाह ताला को। कुरा डाला गया तो तीनों दफ़ा हज़रत यूनुस के नाम आया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर उसको बात को मान लिया और उन्होंने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। मछली को जो है वो हुक्म दिया गया था और उसने सालम उनको निकल लिया। अब जब वो अंदर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि शायद मैं वक्त से पहले निकल आया और अभी तो मेरे पास जो है वो अल्लाह के नबी वो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए नहीं थे, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं तो वो तो आए नहीं थे, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। तो ये जो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता, कि नहीं है इलाहा तेरे सिवा कोई भी, सुबहानका बेशक तेरी ज़ात पाक है, यानी हर उस ऐब से कमी से कोताही से जो मुझ में है। ठीक है, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही खसारा पाने वालों में से हूँ, मैं ही जालिमों में से हूँ, मैं ही गुनाहगार हूँ, मेरी ही गलती थी जो मैंने ये सब कुछ किया। इसीलिए उलमाए किराम कहते हैं कि हर मौके पे जो है ना इसको, क्योंकि आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि इस हमने निजात दी उनको इस गम से, और इसी तरह कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम मुमिनीन को भी जो है वो हमेशा निजात देंगे। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, कोई मुसीबत का वक्त आए या परेशानी का, तो इस कलमे का तकरार बहुत ज़्यादा किया करें। और ये ज़ाती तजर्बा भी है उलमा का भी और मेरा भी बहुत ज़्यादा, कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो निजात की कोई राह पैदा करते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि कुरान करीम में एक जगह आया है सूरह अनफाल के अंदर, और ये भी अल्लाह ताला का वादा है। इसके ज़िम्मन में मैं बताती चलूँ कि जब मुनाफिकीन के लिए नबी पाक ने इस्तग़फ़ार किया तो अल्लाह ताला ने उनको ये बताया था कि ए नबी, कि अगर अंतफीहिम, एक ये शर्त है कि आप इनके साथ अंदर होंगे अगर उम्मत के अंदर तो अल्लाह ताला अजाब नहीं लेकर आएगा, और अगर ये अस्तगफार कर रहे होंगे। दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक ये चीज़ें उम्मत के अंदर बाकी रहेंगी अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। पहली चीज़ क्या है, नबी का होना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी उम्मत में अब नहीं है मौजूद यहाँ, اور دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار کا ہونا. اس لیے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے قرآن میں یہ بات کہ جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو عذاب سے محفوظ اور معمون آپ لوگ رہ سکتے ہیں. اس لیے آج کل بھی خاص طور سے اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے. اس کے بعد آگے ہم پڑھاتے ہیں آپ کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعہ ہے, اور اس میں بھی یہ والا واقعہ کوٹ کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کو جب کہا گیا کہ آپ کو سلطنت دی جاتی ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان کو سلطنت دی اور اس کی حفاظت بھی سلیمان کے سپرد کر دی میں نے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سلیمان کو سلطنت دی مگر انا لہو لحافظون, اس کی حفاظت جو ہے وہ میں نے سنبھالی, سلیمان نہیں سنبھال سکتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی آپ کو بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی آپ دعا دیکھ لیں, انہوں نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں تو مغلوب ہو چکا ہوں, میں تو مطلب مجھ پہ غلبہ پا لیا ان لوگوں نے اور یہ ایمان نہیں لے کر آتے, کہاں 950 سال عبادت کی اور صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے, فانتصر تو آپ میری مدد فرمائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری دعائیں جو ہیں ڈائریکٹ انبیاء نے نبی اللہ رب العزت سے کی ہیں. ٹھیک ہے, اور دعا جو ہے وہ سبب اور وسیلہ ہوتی ہے, اور دعا جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے مومن کا اور سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے, اور جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ رب العزت اسے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے سامنے نہیں تسلیم کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں, وہ بھی کہتے ہیں رب اغفر لی, اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیں, ولی والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے, یہ سب دعائیں ہیں جو کہ مانگی گئی ہیں. اسی طرح سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی آخر میں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو جب انہوں نے مغفرت کی دعا مانگی اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا ان کی خطا کے اوپر. تو تمام انبیاء کو آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو کیا پہلے سے علم تھا اس بات کا کہ جو ہے وہ میں یہ کھا لوں گا درخت پہ سے تو پھر جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دے گا اور دنیا میں بھیج دے گا, پھر تو وہ کبھی بھی نہ کھاتے. اسی طرح یونس علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ میں اگر نکل جاؤں گا یہاں سے تو پھر مچھلی جو ہے وہ مجھے کھا لے گی اور مجھ سے اللہ تعالیٰ مطلب یہ لغزش چھوٹی سی ہو جائے گی, یہ اجتہادی خطا جو ہے مجھ سے ہو جائے گی جو مجھ سے ہو گئی ہے. اگر انہیں پہلے سے پتہ ہوتا تو وہ نکلتے اپنی بستی سے باہر, نہیں نکلتے. اسی طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے والد آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا آخر تک, ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کے والد کی تو موت بھی کفر پہ ہونی ہے تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے. تو انبیاء کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہزاروں ایسے واقعات ملتے ہیں جو آپ کو قرآن اس عقیدے کو واضح کرے گا کہ انبیاء نے بھی جو ہے وہ عالم الغیب نہیں تھے, علم غیب کسی نبی کو نہیں دیا گیا تھا, اور اسی طرح ان میں سے کسی نبی نے بھی جو ہے نا وہ کسی نبی کو وسیلہ نہیں بنایا تھا دعا مانگنے کے لیے, کہ اللہ رب العزت کے نبی کو جب بدر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے اور ہاتھ اٹھاتے تھے اور حتیٰ کہ آپ اتنا روئے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اگر اس وقت تو نے ہمیں فتح نہیں دی پہلی جنگ میں تو یا اللہ تعالیٰ تیرے اس دین کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا دنیا کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس چیز کا علم ہوتا کہ نہیں ہمیں تو اب فتح ہونی ہے تو کیوں اتنا زار و قطار اس وقت روتے اور کیوں آپ کو جو ہے وہ اس طرح اور اس وقت میں آپ نے کسی نبی ولی یا کسی بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا نہیں مانگی. ٹھیک ہے, جو کہ جد امجد ہیں, خلیل اللہ ہیں, حضرت نوح علیہ السلام سے دعا نہیں مانگی یا کسی اور سے دعا نہیں مانگی. تو یہ شرک جو ہے نا دعا کے اندر وہ یہ کہلاتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز کسی سے مانگتا ہے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اس کے اندر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں نیک آدمی کو یا فلاں نبی کو جو ہے نا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ دے دیں, آپ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے, تو یہ چیز شرک ہو جاتا ہے دعا کے اندر. ہاں البتہ اگر آپ کسی انسان سے یہ بات کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے, یہ دعا جو ہے یہ سبب ہوگی, یا ہماری کوئی نیک اعمال ہیں, ٹھیک ہے, یا نیک بزرگ اور نیک لوگ اور انبیاء جو ہیں ان کی شخصیت جو ہے اللہ رب العزت یا آپ کے سامنے ان کی نیکیاں اور جو اعمال ہیں یہ سب, اسی طرح ہمارے جو اعمال صالح ہیں سب, یہ آپ کو بہت پسند ہیں
तो इनके जो इनको जो आपने कबूलियत दी है और इनको जो आपने कबूल किया है उसकी खातिर आप हमारे इस मसले को अल्लाह ताला आप हल कर दें। तो ये तरीका होता है दुआ मांगने का, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो एहतियात करनी चाहिए। चौथी जो चीज़ है वो शिर्क फिल इबादत है। जो इबादत अल्लाह ताला के लिए है, जिस जिस तरीके से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, वो अगर हम किसी और के लिए करें तो वो शिर्क हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, अब ईद उल अज़हा की कुर्बानी हम करते हैं। ठीक है, अब कुर्बानी हम करते हैं तो हम ये वहाँ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर, जब छुरी चलाते हैं गर्दन पे बकरे की। तो और अल्लाह ताला के नबी ने इसके बारे में क्या कहा, ये कुर्बानी आई कहाँ से? आपको पता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानी शुरू की थी। तो नबी पाक ने इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया ना, वो ये कहा है कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे नबी इब्राहिम की कुर्बानी है, ये उनकी सुन्नत है, उनका तरीका है जो उन्होंने अल्लाह के लिए किया और अल्लाह को खुश करने और उनके नाम के लिए किया। ये अल्लाह के नाम की नज़र और न्याज वो है। ठीक है, किसी वली या नबी के नाम की नज़र और न्याज नहीं है। तो इबादत उस वक्त तक मोतबर नहीं होती जब तक के पैगंबर के मुताबिक नहीं हो, क्योंकि ये अमल इबादत बन ही नहीं सकता जब तक के किसी ने अपने नबी के इत्तबा में ना किया हो। चुनाचा इस बात को हमेशा याद रखना कि अमल की कबूलियत के तीन अरकान हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। पहला ये कि अमल करने वाला, मन अमिला सालिहन व हुवा मुमिनुन, कि अमल करने वाला अमिले सौले और मोमिन हो। दूसरा जो है वो इत्तबाए सुन्नत करता हो, सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा हो, उसी तरीके से, उसी अकीदे से, उसी लिहाज से मांगना है और इबादत करनी है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इसके अलावा से कोई तरीका नहीं है। और तीसरी चीज़ इखलास होना चाहिए, नीयत बहुत खालिस होनी चाहिए। समझ में आई ये बात? क्योंकि जो है इसके अलावा में जो है कोई भी काम किया जाएगा, किस तरह से भी आप काम करेंगे, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बिल्कुल भी मकबूल नहीं होगा। मुसलमानों के अंदर जो है ये बात कहाँ से आई है कि वो औलिया अल्लाह को या अम्बिया को इतना बड़ा दर्जा दे दें जो कि अल्लाह के अख्तियारात में, उसके इलम में, उसके तसरुफ़ में या उसकी इबादत में किसी भी तरह का शरीक हो जाए? ये मुसलमानों के यहाँ नहीं, आइन का मसला नहीं है, ये मसला शुरू से चलता चला आ रहा है। ये हमने मुफस्सिरीन से शुरू में पढ़ा है, बिल्कुल जो मुफस्सिरीन ने जो तफसीर की हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ना, जब पूरा गर्क हो गया था सब कुछ और उसके बाद दोबारा कौम आबाद हुई, तो उनके चार बेटे थे, हाम, साम, याफिस और कनान। ठीक है, इन चारों से सारी औलादें दुनिया में जो है वो पैदा हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो हैं वो जब इनके कबाइल चले तो इनमें ये आद और समूद, जिनके नाम आपने कुरान में सुने होंगे, ये सब आए। तो इनके पास जब इनके बुज़ुर्ग और नेक लोग मर जाते थे ना, तो शैतान ने फिर दखल अंदाजी और वसवसे डालना शुरू कर दिए थे और उसने ये कहना शुरू किया कि देखो कितने अच्छे नेक लोग थे, काश काश हम उनकी एक तस्वीर बना लें, काश हम उनकी एक मूरत बना लें, काश हम उनकी एक छवि बना लें, उनका एक मुजस्मा बना लें और यहाँ सामने जो है नसब कर दें। तो इस तरह करते करते ना एक नस्ल गुजरी, दूसरी नस्ल गुजरी और उन्होंने सोचा कि चलो हम बना के रख देते हैं मुजस्मा। वो मुजस्मा साजी शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से हमारे यहाँ एक वो आर्ट के तौर पे होता है, तो वो उन्होंने एक आर्ट के तौर पे उसकी मुजस्मा साजी करना शुरू कर दी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको अपने, जब एक चौक पे आपने नसब किया हुआ है, उसको आते आते देख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से झुकना शुरू कर दिया, ताजीमन, मतलब दिल में कोई बात नहीं है, सिर्फ ये ताजीमन हो रहा है। फिर आगे जाके उसके आहिस्ता आहिस्ता बोसे लेने हो गए शुरू, आहिस्ता आहिस्ता और झुकना शुरू हो गया। फिर शैतान ने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको इसी तरह शिर्क के ऊपर डाल दिया। उलमाए किराम ने इसकी बहुत मिसालें, वजाहतें तफसीर के अंदर लिखी हैं और बुखारी की किताबु तफसीर में ये बात लिखी हुई है बाकायदा। मतलब इसमें से कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं आपको खुद से बता रही हूँ या मेरा अपना कोई नॉलेज हो, ये सब चीज़ें कुरान और हदीस से साबित हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में उनकी जो तफसीर की जो चैप्टर है उसके अंदर लिखा है कि अमल लात, लात कौन थे, फकान यलतु सवीका लिल हाज, ये जो लात था ना ये हाजियों को जो है ना वो जो होते हैं सत्तू वो खिलाते थे, यानी ये नेक आदमी थे, अपने दौर के अंदर ये करते थे काम। इसी तरह ये जो याऊक थे, यगूस थे, नसर, ये भी पांच पुत थे, ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के जो हैं वो बेटे थे, बहुत नेक थे। तो बाज़ ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के भी बेटे थे। तो बहरहाल सातों जो किताबें सियाह सित्ता की हैं हदीस मुबारका की, उसमें मौजूद है ये बात कि कानू इबादन ले सालिहीन, इबादन सालिहीन, कि ये नेक लोग थे सारे के सारे। अब क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी फिर इबादतें शुरू हो गईं, और वो यही चीज़ चलते चलते जो है वो कहाँ तक पहुँच गई थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन तक भी आई थी, ठीक है ना। और आपको पता है कि उनके वालिद आज़र जो है वो बुत तराश थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पे इसकी मजम्मत की और जगह छोड़ के चले गए और सब तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और दो जगहों पे देखे, मक्का में खाने काबा को और फ़लस्तीन के अंदर जो है बैतुल कुदस को आपने आबाद फरमाया। और अपने दो दो बेटे अल्लाह ताला ने उनको दिए, इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में और इसहाक अलैहिस्सलाम को जो है ना वो फ़लस्तीन के अंदर अपना कायम मकाम बनाया, और उनसे नस्ल चली पैगंबरों की। उसके बावजूद शैतान अपने काम में लगा रहा और हम अपने अकीदे को उससे बचा नहीं सके। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में, कायनात में, शैतान मुनज़्ज़म तरीके से वही काम करता चला आ रहा है। और कितने कुफ्फार और मुशरिक मौजूद हैं, और कितने यहूदी और नसारा मौजूद हैं। और जो सही अकीदा था, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने दिया था कि मैं एक हूँ, यकता हूँ, मेरा इल्म, मेरा तसर्रुफ, मेरी इबादत और मेरे लिए दुआ करना, और मेरा हर सिफत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती तौर पे मेरी सिफत है, उसमें किसी को शरीक मत समझना, उसमें किसी को मेरा जो है ना वो बराबर मिला के खड़ा नहीं करना। कुल हु अल्लाह अहद, बेशक कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई हमसर है, ना उसकी कोई बराबरी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता उसकी बराबरी किसी भी चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हर किसी से नफ़ी है, हर बात की हर किसी से नफ़ी है। तो ये दर्द मौजूद है कुरान मजीद में, और ये कुरान की दावत है जो हम सब के लिए है। सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए कि हम मुसलमान अपने अकायद को ठीक करें, उसके बाद दर्द दिल से इस चीज़ को समझें कि मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए जितना ज़्यादा इस अकीदे को नॉन मुस्लिम्स तक फैला सकते हैं। खुदा के लिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा आजाना गुजारिश है, जिनकी जो जो लोग वेस्टर्न सोसाइटी में रह रहे हैं इस वक्त, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, कि प्लीज़ इस अकीदे को वाज़े करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और जो कुफ्फार अभी मर रहे हैं अल्लाह के अज़ाब से, कितनी तकलीफ़ होती है कि हमारी वो बात सही तरीके से उन तक नहीं पहुँची, और हम इसके ज़िम्मेदार बनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन लग्जिशों को माफ़ फरमाए, कि हम जो अपनी दुनियादारी में लगे हुए हैं, अपने ऐश में, अपनी कोताहियों, ये कोताहियाँ हमसे जो हुई हैं, क्या पता हमसे भी इस चीज़ पे अल्लाह ताला सवाल करे कि तुम लोगों ने क्यों अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह के अकीदे को, अल्लाह की तौहीद को जो है वो कुफार तक सही तरह से क्यों नहीं पहुंचाया, और तुम्हारे अपने अंदर क्यों शक व शुबात पैदा हो गए इसके बारे में। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हु क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुरान मजीद के जो उलूम हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कुरान मजीद के अंदर कुल कितने उलूम हैं। जितने लोगों ने आज तक कुरान मजीद की तफासीर लिखी हैं, उन्होंने अपने अपने तौर पे कुरान मजीद को समझा है, उसे डिस्क्राइब किया है, उसकी तफसीर की है, ठीक है, तो उस लिहाज से हर शख्स ने उसको मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि कुरान करीम के अंदर टोटल 10 उलूम हैं, ठीक है, इमाम गज़ाली रहमत अल्लाह के यहाँ जो है वो इनकी इसके अंदर 10 उलूम हैं, ठीक है। इसी तरह जो मशहूर है मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने जिसका तस्करा किया है कि इसमें 6 उलूम हैं, और हज़रत शाह वली उल्लाह रहमत अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि इसके अंदर 5 उलूम हैं, ठीक है। और एक और बहुत बुनियादी जो बात है इसको समझने में, जिसके तहत हम इन तमाम टॉपिक्स, इन तमाम आरा के तहत हम इंशाल्लाह कुरान के उलूम को समझेंगे जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इन सब को एक दफ़ा आप सिर्फ सुन लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि उलूमुल कुरान होते क्या हैं। और चौथी जो बात मैंने आपको बतानी थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल था कि ये अल्लाह ताला के चार जो तीन औसाफ़ का बयान है और एक क़यामत का बयान है, तो ये मैं आपको
بتاتی ہوں کس طرح سے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا شبیر عثمانی صاحب نے جو کہا, جو کہ بڑا آسان سی رائے ہے جو آرام سے سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو, کہ وہ جو چھ باتیں قرآن مجید میں زیادہ ڈسکس کی گئی ہیں, یعنی جن چھ باتوں کے اوپر قرآن مجید کے تمام علوم کو جمع کیا جا سکتا ہے, وہ ایک تو توحید ہے, ٹھیک ہے, دوسری جو ہے وہ رسالت ہے, تیسری قیامت کا بیان ہے, چوتھی جو ہے وہ عبادت کے بارے میں ہے, اس میں احکامات وغیرہ بھی آ جاتے ہیں سارے, پانچویں بات جو ہے وہ ہے موافق کا ذکر کرنا, یعنی کہ جو انبیاء ہیں ان کے قصے وغیرہ اور نیک لوگوں کے قصے یا کسی بھی قسم کے جو ہیں وہ خبریں اور جو ہیں وہ قصص اور کہانی وغیرہ جس کا جو بھی ذکر ہے یا تذکرے, تو وہ سارے جو ہیں وہ ذکر الموافق کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز جو ہے وہ ذکر المخالف ہے, یعنی مشرکین کا بیان, اس میں چاہے عیسائی ہو جائیں, چاہے نصرانی ہو جائیں, کرسچنز ہوں, جیوز ہوں, چاہے گائے کو ماننے والے ہو جائیں, چاہے وہ گائے کی پوجا کرنے والے ہوں, یا چاہے مشرک ہوں, چاہے بت پرست ہوں. اسی لیے پہلے میں نے آپ کو مشرکین کی تمام قسمیں بتا دی تھیں, وہ سب جو ہیں وہ ذکر المخالف کے بیان میں آئیں گی. پھر اس کا ایک میں نے آپ کو بتایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی اس کے علوم کو جب جانچا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں 10 علوم کا تذکرہ ملتا ہے. اس کی تفصیل ہم جب تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے درمیان میں کریں گے, میں فاتحہ کے آخر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کروں گی. اور جو اہم ترین توجیہ ہے جو یہاں آپ نے سمجھنی اور یاد رکھنی ہے, جس کے اوپر پورا قرآن مجید انشاءاللہ آپ تقسیم کر سکتی ہیں, وہ اس طرح سے ہے کہ جو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی قرآن مجید میں بنیادی طور پہ چار مسائل کا تفصیلاً بیان ہے, اور وہ ہے, پہلا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک, فاتحہ کے بعد سورہ نساء آتی ہے, سورہ بقرہ آتی ہے, پھر سورہ آل عمران آتی ہے, پھر سورہ نساء آتی ہے, پھر سورہ مائدہ پانچویں سورت ہے, ٹھیک ہے, ترتیب کے ساتھ ہیں یہ پانچوں صورتیں. تو انہوں نے کہا کہ ان تمام صورتوں میں نا زیادہ تر آپ کو جو کلیم ملے گا اللہ تعالیٰ کا, وہ اس کے کریٹیویٹی کا ہے, اس کی خالقیت کا بیان ہے اس میں, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ایک کریٹر ہے اور اس کی کیا کیا پروفس ہیں, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان پانچ صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گی, ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کا بیان جو ہے وہ کا جو مضمون ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر. پھر جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ سورۃ المائدہ کے بعد ساتھ جو اگلی سورت آتی ہے نا, وہ سورۃ الانعام ہے. سورۃ الانعام سے لے کر جب ہم پہنچ جاتے ہیں 15ویں پارے تک نا, بنی اسرائیل تک, وہاں تک انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی جو صفات ہیں نا ان کو ایکسپلین کیا ہے, اور اس کے بھی پھر سارے پروفس ہیں اور وہ ساری باتیں ہیں, وہ سب ہم انشاءاللہ جو جو صورت پڑھیں گے اس کے اندر اس چیز کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح انہوں نے اس بات کو بیان کیا اور سمجھائے. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی حاکمیت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہر جگہ پہ متصرف ہونا, جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا. وہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد کون سی سورت آتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے, سورہ کہف آتی ہے. سورہ کہف سے لے کر سورۃ الاحزاب تک جو ہے وہ ان باتوں کا سب کا بیان ہے 22ویں پارے میں. تو یہ متصرف ہونے کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار اور قدرت, اس کی حاکمیت اور اس کی جو ہے وہ بادشاہی, شہنشاہیت جسے ہم کہیں گے, شاہان شاہ ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ سب چیزیں ان صورتوں میں آتی ہیں, سورہ کہف سے سورہ احزاب تک. پھر سورہ احزاب کے بعد سورہ فاطر سبا آ جاتی ہیں, وہاں سے لے کر جو آخر کے پارے ہیں سارے, یہ سورۃ الناس تک, آخری سورت تک نا, یہ ساری جو ہے اس میں زیادہ جو مضمون ہے یا زیادہ تفصیل ہے وہ قیامت کے بیان کے بارے میں. تو گویا کہ تین جو ہیں وہ اللہ کی صفات ہو گئیں, اور ان تینوں صفات میں یعنی پورے 3/4 جو قرآن مجید ہے اس کے اندر اللہ کی خالق ہونا, اللہ کا رب ہونا اور اللہ کا متصرف ہونا, اسی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن مجید ہے اس کی صداقت کا بھی تذکرہ ہے کہ سچی کتاب ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ ہے, ٹھیک ہے. تو دو عقیدے بھی یہاں پہ آ گئے, اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا اکیلے ہونے کا عقیدہ کہ اللہ کی طرف جوڑنے کا عقیدہ، یہ سب جو ہے جڑنے کا عقیدہ، یہ سب ان تین شروع کی پوائنٹس میں آ گیا. اور جو چوتھا پوائنٹ ہے قیامت کا، سورہ فاطر اور سبا سے لے کر سورہ ناس تک، تو اس کے اندر جو ہے وہ آخرت کا بیان آ گیا. انہی چار عقائد کو بالکل ابتدا میں میں نے آپ کو شاید آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا کہ ان چاروں باتوں کا جو بیان ہے یہ بیسیکلی یہ قرآن کے کلیمز ہیں، اور انہی کو ڈسکرائب کریں گے ہم اس کے اندر. اس کے علاوہ ایک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی جو اصول تفسیر کی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے قرآن مجید کو اپنے علم کے مطابق انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، سمجھا ہے اور اس کی وہ کی ہے. تو اس میں وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب جو ہے نا یہاں پہ پانچ علوم ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر. ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو گئے نا، سمپلی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرو کیا نہ کرو، ٹھیک ہے، اس طرح کے احکامات ہو جاتے ہیں، ان کو علم الحکام کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں پھر دوسرے نا، جب ہم غور کرتے ہیں تو کہیں پہ دیکھیں آتا ہے کہ کسی کے ساتھ جیسے آپ بحث کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور گفتگو کر رہے ہوں اور کسی کو دلائل دے کے آپ کوئی بات پروف کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم عربی میں نا علم المخاصمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. خصومت جو ہے جھگڑے سے ہوتی ہے ویسے، جو لفظی معنی ہوتا ہے اس کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی جو مشرقین کی باتیں ہیں یا جو بھی ہیں تو اس کے اوپر مقدمہ قائم کرتے ہیں اور مخاصمہ کرتے ہیں، ہم یہ لفظ اس میں استعمال کرتے ہیں. عربک کی ٹرمنالوجیز ہیں جس طرح کہ آپ کی میڈیکل کی اور دوسری چیزوں کی ہوتی ہیں، تو اس میں یہی باتیں الفاظ زیادہ سوٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن ڈسکرائب کرنے میں یہ چیز آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب مشرقین کا بیان ہوتا ہے، کوئی بات آ رہی ہے کہ مشرقین کے بارے میں، تو پھر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کے جو جوابات دے رہے ہیں، سمجھیں آپ، یا وہ جو کیچڑ اچھالتے تھے اسلام کے اوپر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا کتاب کے اوپر یا وحی کے اوپر یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر، ان کے جوابات جو اللہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے دیتے ہیں، تو اس کو علم المخاصمہ کہا جاتا ہے. جو تیسری چیز ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کرتے ہیں نا، کہ الرحمن علم القرآن، ہے نا، خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ ساری مطلب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو اپنا جانشین بنایا، پھر اس کے لیے زمین آسمان کو مسخر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ساری دنیا کائنات زمین آسمان میں نے اے انسان تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. تو یہ نعمتیں ہیں جو کہ یاد دلاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تذکرہ جو ہے، اس لیے ان کو انہوں نے اس کا نام جو رکھا عربک ٹرمینالوجی میں، ہم اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بھی اعلیٰ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نا، وہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ تھرڈ نمبر پہ مطلب جو مجھے نظر آتی ہیں اس میں قرآن مجید میں. چوتھی جو انہوں نے کیٹیگرائز کیا وہ کیا کہ یہ جو واقعات اور قصے کہانیاں ہیں، اب جیسے اب دیکھیں نا پوری سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف آ گئی، جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے ہیں، واقعات ہیں، قصص ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایام اللہ کہلاتے ہیں، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ علم التذکیر بھی ایام اللہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کی ان ٹرمز کو یاد کریں، بس اس بات کو سمجھ لیں آپ کے لیے کافی ہے. تو مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی نوحا ہو جائے، یہ سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ ایک علماء نے جو اتنا تحقیقی کام کیے ہیں، اتنا کچھ کیا ہے، تو اس میں ان کی کیا کیا ٹرمز انہوں نے یوز کیے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. تو علم التذکیر بھی ایام اللہ ان کو کہا گیا ہے، جو قصے کہانیاں واقعات اور قرآن مجید میں ہوتے ہیں. اور جو پانچویں چیز ہے وہ موت کا ذکر نا، کہ موت پہ کیا ہوگا، ما بعد الموت کیا ہوگا، یعنی کہ اس کو انہوں نے کہا ہے علم التذکیر بالموت و بعد الموت، یعنی کہ قیامت کا بیان اور انسان کے مرنے کا بیان. تو یہ پانچویں جو ہے وہ کیٹیگرائز جو انہوں نے کیا ہے، تو پانچویں کیٹیگری ہے اس کے بارے میں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی علوم القرآن کی تفسیر کے اندر اس کو لکھا ہے. اس کے بعد اگلی ویڈیو آڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کی الگ الگ سے معنی اور اس کا مفہوم، اور اس کو جو ہے وہ کن احکامات کے تحت جو ہے وہ ان کو اس کو جو ہے وہ قرآن مجید میں پہلے پڑھا جاتا ہے. صدق اللہ العظیم.